दोस्तों, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिज होलीनेस भक्ति रस अमृता स्वामी जी। ये इस्कॉन मिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आजकल भारत से वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं। अभी पीछे ही इनका सेमिनार हुआ है सिडनी में, इसके अलावा मेलबर्न में भी सेमिनार्स हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं तो हमने ये मौका उठाया है उनके साथ कुछ संवाद करने का, उनके साथ बातचीत करने का और ये जानने का कि इस्कॉन क्या है और कुछ जीवन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हम स्वामी जी से पूछना चाहेंगे। और मेरे को उम्मीद है कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भेज सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है वो जवाब भी आएंगे। लेकिन इस समय हमारे पास जो मन में अक्सर दोस्तों कुछ ना कुछ खलबलाहट चलती रहती है कि जिंदगी है क्या, जीवन क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पर, हम हैं तो हम हैं क्या, तो इन क्वेश्चंस को लेके स्वामी जी से आज हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ आए।
धन्यवाद। हरे कृष्णा।
स्वामी जी के बारे में इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि स्वामी जी ने इंजीनियरिंग करी हुई है फ्रॉम बड़ौदा यूनिवर्सिटी और उसके अलावा उन्होंने MBA भी की हुई है। कुछ देर उन्होंने एक मल्टीनेशनल बैंक में भी काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब चीजों से त्याग ले लिया और टोटली भक्ति की तरफ वो आ गए। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा, स्वामी जी इस्कॉन मिशन क्या है? कुछ लोग जानते हैं लेकिन बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में उनके तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए क्या आप हमें बताएंगे इस्कॉन क्या है?
इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में कहा जाए तो श्री कृष्ण भावनामृत संघ।
जी,
श्री कृष्ण की भावना लोगों में के हृदय में जागृत करने का उद्देश्य है हमारी संस्था का। और मूल फिलॉसफी या दर्शन यही है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम आत्मा हैं और हमारा श्री कृष्ण के साथ एक नित्य संबंध है जो प्रेम का संबंध है, और भक्ति के द्वारा उस प्रेम को पुनः जागृत करना हमारे जीवन का लक्ष्य है।
आपने बहुत अच्छी बात कही कि भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा इसे जागृत करना हमारा लक्ष्य है। आज की जिंदगी में अगर आप देखें तो देर इज लस्ट एंड देर इज लव, दो चीजें हैं। लस्ट हमें दूर लेके जाती है, लव हमें नजदीक लेके जाती है, लेकिन दुनिया जो है वो लस्ट की तरफ ज्यादा भाग रही है, लव की तरफ कम है। तो ये जो जर्नी है हमारी लस्ट से लव की तरफ, वो कैसे पूरी हो सकती है?
लस्ट या काम क्या चीज है? वो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं जो कि सत्य नहीं है, और हमारे शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसे लस्ट कहते हैं या काम कहते हैं। इसके विपरीत जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने की चेष्टा करते हैं, तो उसे प्रेम कहते हैं। तो काम भौतिक या शारीरिक स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर भी हो सकता है, बौद्धिक स्तर पर भी हो सकता है, परंतु प्रेम, सच्चा प्रेम, वो आत्मा के स्तर पर होता है।
और इसकी जर्नी कैसे तय की जा सकती है? क्योंकि लोग ये देख रहे हूँ कि अक्सर आपने देखा है कि भौतिक तत्वों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति फिर भी नहीं मिल पा रही, वो दूर है उससे, वो भटक रहे हैं, वो प्यार ढूंढ रहे हैं, सच्चा प्यार जैसे आपने कहा, तो वो जर्नी तय कैसे हो पाएगी स्वामी जी?
ये बहुत अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी शुरुआत जो है ये ज्ञान से शुरू होती है। किसी चीज के लिए हमें ज्ञान चाहिए। हमें किसी यात्रा में जाना है तो ये पता होना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है और हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात ये है ज्ञान की। अब दूसरी बात यह है कि ज्ञान कहाँ पाया जा सकता है। तो ज्ञान भगवान के भक्तों के संग में पाया जाता है। तो भक्तों के संग में आखिर जब हम सुनते हैं, जिस तरह से विद्यार्थी किसी पाठशाला में जाके अध्यापक से सीखते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से हमें भी भक्तों के संग में जाके सुनना चाहिए और प्रश्न करने चाहिए। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, प्रश्नोत्तर के लिए पूरी छूट दी जाती है। तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से फिर हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए वास्तव में, और ये सब संघ के ऊपर निर्भर होता है।
बहुत अच्छा कहा आपने स्वामी जी। एक मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि तीन साल्वेशन के पाथ कहीं पे लिखा था कि होते हैं, एक होता है भक्ति मार्ग, एक होता है कर्म मार्ग, कर्मा कहते हैं जिसको, और एक होता है ज्ञान मार्ग। अभी आपने जब पिछले सवाल का जवाब दिया उसमें आपने ज्ञान मार्ग की बात करी शायद कि ज्ञान होना जरूरी है, भक्तों के साथ बैठना जरूरी है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होने चाहिए, विजडम होना जरूरी है। तो बाकी जो दो और मार्ग मैंने पढ़े हैं, क्या उसके अलावा भी कोई मार्ग है, या फिर कर्मा और भक्ति दोनों मार्ग भी अपने अपने रास्ते हैं जिसके थ्रू हम साल्वेशन की तरफ जा सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, काफी गहरा सवाल है वास्तव में। अब इसे योग पद्धति कहते हैं। योग शब्द का मतलब है भगवान से जोड़ना अपने आप को। योग शब्द युज शब्द से आता है, मतलब जोड़ना। तो भगवान से हमारा संबंध पुनः स्थापित करना, इसे योग कहते हैं। अब आपने सही बताया कि ये तीन रास्ते हैं प्रमुख, ज्ञान, योग। यहाँ योग का मतलब है अष्टांग योग, जिसमें ध्यान योग आदि सब सम्मिलित है, और आगे भक्ति योग। अब ऐसे बताया जाता है कि योग एक सीढ़ी के बराबर है जो हमसे शुरू होकर सीधे भगवान की ओर जाती है। अब इस सीढ़ी के जो अलग अलग स्तर होते हैं उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे हम किसी इमारत में चढ़ के जाते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो हमारी ऊंचाई के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, ये पहला मंजिल है, ये दूसरा है, तीसरा है। ठीक उसी तरह से हम शुरू करते हैं कर्म योग से, वैसे योग के रास्ते में भी नहीं होते, और फिर धीरे धीरे जब कर्म योग में आते हैं कि भाई हम कर्मों का फल जो है उसके हम अधिकारी नहीं है, परंतु तो कौन अधिकारी है इसके बारे में शायद ज्ञान उतना गहरा न हो, इतना ही पता है कि मेरा अधिकार नहीं है इसमें, मैं भोक्ता नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि नहीं, एक परम सत्य है, एक भगवान है जो कि वास्तविक भोक्ता है, वो मेरे कर्मों के फल के अधिकारी हैं या भोक्ता है, तो उनके चरणों में ये कर्मों के फल समर्पित करने चाहिए। तो इस स्तर तक ये कर्म योग होता है। आगे चल के जब व्यक्ति के ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे फिर वो सोचने लगता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए, अपने अंतःकरण में भगवान के ऊपर ध्यान करने लगता है, और आगे चल के फिर सोचने लगता है कि मुझे ज्ञान मार्ग में निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, और धीरे धीरे आगे चल के उसे पता चलता है कि नहीं, भगवान केवल एक ज्योति या प्रकाश नहीं है, उस ज्योति के पीछे भी एक कोई व्यक्ति है, जैसे सूर्य के किरणों के पीछे सूरज का गोला है, जहां भी कोई रोशनी होती है तो उसके पीछे कोई स्रोत होता है। तो ठीक उसी तरह से ये निराकार के पीछे भी एक व्यक्ति है, उनको भगवान कहते हैं, चाहे भगवान को किसी भी नाम से क्यों न बुलाएं। अलग अलग धर्मों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, परंतु है परम सत्य एक। तो उस परम सत्य के प्रति हमारे हृदय में जब प्रेम की भावना उत्पन्न की जाती है तो उसे भक्ति कहती है। तो समस्त योग पद्धतियों का जो उद्देश्य है, गंतव्य है, वो है भक्ति,
वो भक्ति है। तो रास्ता कर्म योग से शुरू होता है और भक्ति की तरफ जाता है।
हाँ, परंतु जैसे अभी हम सीढ़ियों से चलते जाएं, पहले मंजिल, दूसरे मंजिल, यदि हमें सातवें मंजिल तक पहुंचना है बहुत समय लगेगा, तो यदि हम भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग के मार्गों से होते हुए जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम लिफ्ट में चले जाएं तो डायरेक्ट भक्ति योग कर लें।
अच्छा,
तो ये लिफ्ट है,
ये लिफ्ट है,
तो बस सीधे अंदर चले गए।
हाँ, हाँ।
और सीधे भगवान का नाम लेकर जो है सीधे ऊपर पहुंच गए।
ये बहुत अच्छी बात कही कि शॉर्टकट भी है,
शॉर्टकट भी है।
मैं अक्सर सोचता हूँ स्वामी जी कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बच्चा है, कोई वो चिल्ला रहा है या उससे भी अच्छा काम किया है, तो अपने माँ बाप की तरफ देखेगा, उनसे प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी वो खड़ा रहेगा, शायद टॉफी मिल जाए, शायद खिलौना मिल जाए। तो मेरे को लगता है कि हमारे सबके अंदर एक बच्चा अभी भी है, हम बड़े चाहे हो गए हैं लेकिन ये होता है कि अगर हमने आज पूजा पाठ कर लिया, कोई अच्छा कर्म कर लिया, हमारा खिलौना कहाँ है, हमारा अवार्ड कहाँ है, तो उस अवार्ड की लालसा रहती है। और वो अवार्ड जो है जब नहीं मिलता तो आदमी कई बार भटक जाता है कि नहीं, मेरे को भक्ति का अवार्ड तो मिला नहीं, क्योंकि उसको कोई टेंजिबल चीज नहीं मिल रही है। वो चाहता है कि मेरे को ऐसी चीज मिले जिसे मैं देख पाऊं, जिसे मैं प्रूव कर पाऊं कि हाँ मेरे को अवार्ड मिला है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो भक्ति है, उसके लिए एक संदेश है आपके पास?
एक बहुत ही विचित्र और आश्चर्यजनक बात ये है दुनिया में, जिसको कि लोग अधिकांश ऐसे पहचानते नहीं है, वो ये है कि जितना स्वार्थी हम बनेंगे उतना हम सच्चे सुख से दूर रहेंगे।
बिल्कुल सही।
और जितने हद तक हमारे हृदय में निस्वार्थीपन जो है आ जाता है, उस हद तक हम सुख के करीब पहुंच जाते हैं। और सर्वोच्च निस्वार्थीपन जो है वो है भगवान की सेवा में कार्य करना। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अपने समाज के प्रति समर्पित कर देता है, अपनी अपनी सुख सुविधा को नहीं देखता है, कोई अपने परिवार के लिए करता है, कोई देश के लिए करता है, कोई मनुष्य समाज के लिए करता है, तो ये सारे त्याग की भावनाएं हैं, अपने आप में प्रशंसनीय है अवश्य, परंतु सबसे ऊंचा जो त्याग है, सबसे ऊंचा जो एक विषय है जिनके लिए हम सब कुछ त्याग करके उनकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से, वो है भगवान। तो ऐसे भगवान के प्रति समर्पित होने से सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है।
बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि यही बात आजकल कईयों के मन में चलती है, आजकल क्या जन्म जन्म से चलती आई है, जो तो भक्ति रस में लग जाते हैं, टोटली अपने आप को उसमें डुबो लेते हैं, और कुछ होते हैं कि उनको देख तो हैं, उनको देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कर्मा जिसे कहते हैं कि मैंने कर्मा कर दिया, मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि ये सिर्फ निस्वार्थ भाव से ही आ सकता है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर हम लोगों के मन में आता है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं, आप क्या हैं, ये जीवन क्या है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो दैट आई नो, हाउ डू आई नो दैट आई एम कॉन्शियस। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, मेरे श्रोता जानना चाहेंगे आपसे।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप बड़े बहुत सोच समझ के सवाल कर रहे हैं। हाँ, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं कौन हूं, परंतु लोग नहीं जानते। यदि हम किसी से पूछें कि आप कौन हैं, तो वो कह देगा मेरा नाम अमरजीत सिंह है, या मेरा नाम फलाना फलाना है, लेकिन ये तो उनका नाम नहीं है। जैसे आप यदि मर्सिडीज गाड़ी में बैठे हैं, यदि हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या, आप कहें मेरा नाम मर्सिडीज है, नहीं, मर्सिडीज गाड़ी में आप बैठे हैं, परंतु आप मर्सिडीज गाड़ी से अलग हैं। ठीक उसी तरह से हम आत्मा हैं भगवद गीता के अनुसार, और ये आत्मा अमर है, आत्मा इस समय शरीर में है, शरीर आत्मा के लिए एक वाहन है, गाड़ी के बराबर है, आत्मा गाड़ी को चला रही है, और जब आत्मा चली जाती है शरीर छोड़कर, इसे मृत्यु कहते हैं। और आत्मा ही चेतना है, चेतना जो है ये आत्मा का लक्षण है, सिम्टम, जिस तरह से सूर्य के किरणें सूर्य के लक्षण है, जिस तरह से उष्णता प्रकाश अग्नि के लक्षण है, तो उसी तरह से चेतना या कॉन्शियसनेस ये आत्मा का लक्षण है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि हम कैसे समझें कि हम कॉन्शियस हैं। वैसे एक यूरोपियन दार्शनिक थे, फिलोसोफर डेकार्ते, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसका मतलब है मैं हूं। तो मैं हूं ये तो सभी को पता है, एक जानवर भी जानता है कि मैं हूं, परंतु मैं कौन हूं ये जरूरी बात है।
बहुत अच्छा आपने बताया कि अपनी जागरूकता का होना ही आई नो सो आई एम, लेकिन इसके साथ ही जवाब एक और आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर आत्मा है, परमात्मा है, तो मैं उस परमात्मा को देख क्यों नहीं पाता हूँ। आप जैसे भी कह रहे थे कि सूरज की किरणें हैं तो सूरज है, इसी तरह से अगर चांद की किरणें हैं तो चांद है, चांद पर लोग जा चुके हैं, फील कर चुके हैं उसको। अगर आत्मा है और परमात्मा की तरफ से आत्मा है तो वो परम पुरुष, वो परमात्मा कौन है, क्या है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, कई बार ये सवाल भी आते हैं।
अब सूरज के किरणों को या चांद के किरणों को भी सभी लोग नहीं देख पाते, जो लोग अंधे हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता, और या अंधा नहीं भी हो, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे और कोई किरण अंदर आए नहीं और कहे कि सूरज नहीं है, और कोई कहे कि भाई देखो खिड़कियां खोल दो सारी रोशनी आ जाएगी, पता चलेगा? नहीं, खिड़की भी नहीं खोलेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह से आत्मा को जानने के लिए और आत्मा है इस बात का विश्वास लाने के लिए हमें अपने हृदय की खिड़कियों को खोलना चाहिए और सत्संग में जाके ज्ञान शास्त्रों का, जैसे भगवद गीता है, वो ज्ञान हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर तब धीरे 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 से हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगी, फिर हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम आत्मा हैं, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है।
इसी तरह से स्वामी जी, कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बीइंग अ रिलीजियस पर्सन एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन, क्या दोनों में कोई अंतर है या एक ही चीज है, और रिलीजियस होना इनफ है स्पिरिचुअल होने के अलावा, कि स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है, स्पिरिचुअलिज्म इज द ओनली पाथ।
ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आजकल ऐसे कई लोग हैं जिनकी ऐसी धारणा है कि हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं लेकिन रिलीजियस नहीं होना चाहते, तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल के जमाने में वो देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे कितना खून खराबा हो रहा है, लोगों के बीच में कितनी घृणा उत्पन्न हो रही है, धर्म के नाम पे लोग तरह तरह के गलत और बुरे काम करते हैं, इसलिए लोग उब गए हैं थोड़े बहुत, तो सोचते हैं कि ये धर्म हमें नहीं चाहिए, रिलीजन नहीं चाहिए, हम केवल स्पिरिचुअल रहेंगे। दूसरी ओर कोई ऐसे लोग हैं जो केवल धर्म का पालन करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में देखा जाए तो कोई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता नहीं दिखाई पड़ती। तो धर्म, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में गहरा संबंध है। सच्चा धर्म ही आध्यात्मिकता है। सच्चा धर्म क्या है? वैसे देखा जाए तो अनेक धर्म है। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर व्याख्या करने के लिए तो काफी समय लगेगा, परंतु संक्षेप में यदि कहूं कि सबसे ऊंचा जो धर्म है इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि समस्त धर्मों को त्यागो और केवल मेरे शरण में आ जाओ। अब भगवान जब कहते हैं कि समस्त धर्मों को त्यागो, तो ये हमें लग सकता है कि भाई भगवान तो धर्म की स्थापना करने आते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि धर्म को त्याग दो, लेकिन किस तरह के धर्म को त्यागने की बात भगवान करते हैं? जो सारे झूठे धर्म है, मिथ्या धर्म है, शारीरिक भावना पर आधारित जो धर्म है उनको त्यागने के लिए कहते हैं, और उस धर्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं जो सर्वोच्च धर्म है, माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान की एकांत भावना से, जो एकाग्र चित्त से भगवान के शरण को ग्रहण करना, ये सर्वोच्च धर्म है, और इस धर्म के अनुसार जब हम कोई कार्य करेंगे वो भी आध्यात्मिकता हो जाती है, क्योंकि ये आत्मा के स्तर में है।
इसी के साथ जुड़ा एक बयान, कई बार मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है स्वामी जी, और कई बार लोग भी अक्सर जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का और इंसान का जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का रिश्ता है, और वो ये भी कहते हैं कि अगर बाप बेटे का रिश्ता है तो फिर एज अ बच्चा मैं अपने पिता से सीधी बात क्यों नहीं कर सकता, मुझे मैं घर पे बैठ के सीधा ध्यान क्यों नहीं कर सकता, इस तरह के विचार आते हैं। वो कहते हैं कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, या हमें कोई थर्ड पर्सन क्यों चाहिए अपने पिता से बात करने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर कई लोग, जैसे आपने कहा कि इतने सारे धर्म देखते हैं, वो विचलित हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मन में ये विचार फिर भी रहता है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, मैं कैसे बात करूँ उनसे, मेरे को बीच में कोई और बंदा नहीं चाहिए, मेरे को कोई और इंसान नहीं चाहिए साथ में, और ना ही मेरे को किसी मंदिर में जाना है। तो वो हालांकि ये नहीं कि वो नास्तिक हो गए हैं, लेकिन उनका जैसे आपने कहा कि मन टूट सा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश है कि वो किस तरह से जुड़ पाए? वो जो सोच रहे हैं कि मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना कोई व्यक्ति चाहिए, मैं सीधा ही अपने पिता से बात करूंगा, उनके लिए क्या रास्ता है? क्या वो रास्ता सही अपना रहे हैं या उनके अंदर कोई भरम है जिनका दूर होना जरूरी है?
हाँ, ये बात तो सही है कि हम कि भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, सबके पिता हैं, और हमारा उनके साथ जो संबंध है वो व्यक्तिगत रूप से है। हर एक जीव का संबंध भगवान के साथ है, विशेष संबंध है, और हमारा अधिकार बनता है भगवान के साथ ऐसे संबंध रखना। परंतु महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम हमारे पिता भगवान को जानते हैं? संबंध, जब हम संबंध स्थापित करने की बात आती है, उनसे बात करने की बात आती है, तो हमें जानना चाहिए ना कि वो भगवान है कौन, वो कहाँ है। जैसे बाप बेटे का संबंध जो होता है, घर में यदि बच्चा पिताजी की बात नहीं मानता, मनमाना करता है, तो फिर घर में क्या शांति हो सकती है? वो कहता है पिता है, पिता के साथ मैं बात करता हूँ लेकिन झगड़ा करता हूँ, मैं उल्टा जवाब देता हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। तो पिता क्या कहते हैं वो बच्चे को समझ लेना चाहिए, और यदि वो आज्ञाकारी पुत्र बन गया तो फिर घर में शांति होगी और उसके जीवन के लिए भी अच्छा होगा, चरित्रवान लड़का निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से हम भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, परंतु भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन यदि हम करें तो दुनिया में जो कि भगवान का परिवार है, शांति कैसे हो सकती? तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान कहते क्या हैं, भगवान हैं कौन, और उनके संदेश को जानने के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कहा करते थे कि मंदिर तो वो स्थान होना चाहिए जैसे विश्वविद्यालय हो, जहाँ जाके व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे भगवान के पास।
दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं आज स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज आपके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, हमारे श्रोता आपकी बातों को सुन पा रहे हैं। हम यही बातों का सिलसिला दोस्तों अगले हफ्ते फिर से जारी रखेंगे। आज हमारा इस कार्यक्रम का पहला पार्ट है और अगले हफ्ते हम दूसरा पार्ट स्वामी जी के साथ इसी बातचीत का फिर से लेकर आएंगे। तो मैं इस समय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगले भाग के लिए हमारे साथ वो जुड़े। और दोस्तों, आप वेट कीजिए, अगले हफ्ते हम इसी श्रृंखला में दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे।